नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। आज संविधान हत्या दिवस है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता की पंक्तियां पढ़ी। प्रधानमंत्री ने कविता साझा करते हुए लोगों से भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की संवेदनाओं से जन्मी इन पंक्तियों को सुनने का आग्रह किया, जो आज भी आपातकाल के उस काले अध्याय को बयां करती हैं।
जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
सीख चौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, एक बरस गया, एक बरस।
विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने अधिक सहयोगात्मक विश्व व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत के वसुधैव कुटुम्बकम के मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि भारत ऊर्जा प्रणालियों के निर्माण की दिशा में ब्रिक्स सहयोग को मजबूत करना चाहता है। आज गुरुग्राम में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की 11वें बैठक का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि विकास की आकांक्षाओं और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया गया है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह कराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गई हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि शक्तिशाली भूकंपों में 32 लोगों की मौत हो गई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। इस बीच जापान के उत्तर पूर्वी भाग में आज सुबह 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। अधिकारियों ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। यह आवेदन अब राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हर वर्ष उन शिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और समर्पण का परिचय दिया है। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरे में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।